अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डं जागुडरोच संविदत सङ्गपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोत्कलप्रियं ध्यायेन्तां। त्वयि वास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणम्। এতদিন আমরা সকালবেলা দামোদরষ্টক সমাপ্ত করেছি, তথাপি প্রতিদিন কীর্তন হবে। এরপরে আমি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা সংকলিত ভজন রহস্য পাঠ করব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থের মধ্যে ভজন রহস্যের একটি বিশেষ স্থান আছে। যারা ভজন করবার প্রয়াসী, যে লোক ভজন করার চাহতে হ্যাঁ, জরুর সেই ভজন রহস্য কো পাঠ। ভজন কা রহস্য ক্যা হ্যায়, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর জি নে কহা হ্যায়। ইসলিয়ে ইস ভজন কে রহস্য কো সমঝনা চাহিয়ে। বিশেষ করকে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর জি নে শিক্ষাষ্টক জো মহাপ্রভু কা স্বরচিত আঠ শ্লোক হ্যায়, उन आठों श्लोकों के अनुसार में इसकी व्याख्या की है। भक्त विनोद ठाकुर ने भजन के लिए आठ याम माने दिन के तीन, रात के तीन, एक सवेरे एक शाम, ये आठ। वैष्णव लोग, हमारे रूपानुग वैष्णव लोग, आठों जाम में भगवान की जो जो लीलाएं हुई उसको अपने सिद्ध देश से स्मरण करते हुए भजन करते हैं। उसमें ये बतलाएं कि कैसे हम लोग अष्टकाली लीला का स्मरण कर सकते हैं। निशांत लीला, प्रातःकालीन लीला, दोपहर से पूर्व पूर्वान्न लीला, फिर मध्यान्ह लीला, सायान्ह लीला और फिर प्रदोष लीला, फिर रात्रि और निशान लीला। ये आठ लीलाएं हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसको आठ भागों में बांटा भजन को। सबसे पहले श्रद्धा साधु संघ के द्वारा, इसके बाद में भजन क्रिया आरंभ होगी, अनर्थ निवृत्ति होने लगेंगे। अनर्थ क्या है? हमारे भगवान के साथ में क्या संबंध है, इसको भूल जाना ही अनर्थ है। इसी से जावतीय अनर्थ पैदा होते हैं। उस समय में धन में, संपत्ति में, परिवार वर्ग में आसक्ति हो जाती है, मैं ही शरीर हूं, शरीर ही मैं हूं, और ये हमारे कुटुंबी जन हमारे हैं, ये रुपया पैसा संपत्ति है, इसी से सुख होगा। किंतु कदापि रुपये पैसे से कोई भी सुख नहीं हो सकता, कदापि नहीं, बल्कि उसमें आसक्ति होने से फिर जन्म होगा तो फिर कहीं सांप जन्म लेना पड़ेगा और कुबेर की तरफ में उसके ऊपर बैठ करके रक्षा करने लग जाएंगे। इसलिए धन का सदुपयोग करते हुए जीवन निर्वाह के लिए करते हुए समझ लो एक पैसा दबड़ी भी तुम्हारे साथ में कुछ नहीं जाएगा और तुम्हारे परिवार का कोई भी साथ नहीं जाएगा। इसलिए गधे के समान में परिश्रम न करके जीवन निर्वाह के लिए करो और जो कुछ भी करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का इस प्रकार से कहना है कि इनमें आसक्त न हो, ये आसक्त ही समस्त अनर्थों का मूल है। गुरु पदाश्रय करके भजन करने से अनर्थ निवृत्ति होती है, इसके बाद में निष्ठा होती है, इसके बाद में चतुर्थ स्थल में रुचि हुई, रुचि के बाद में आसक्ति हुई, आसक्ति के बाद में भाव हुआ छ, और आसक्ति के बाद में विप्रलम्भमयी प्रेम होता है और आठवें में संभोग रूपी प्रेम होता है। यही अष्टकाव्य लीला में राधा कृष्ण के नित्य मिलन में जो अष्टकाव्य लीला है उसमें प्रवेश करने का अधिकार यही देगा ग्रंथ। इसलिए इसको खूब अच्छी तरह से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, प्रयास करते हुए जाते भजन राज्य प्रवेश कर। भजन कच्छी ना पहले की हमें एक नदी आछे तहां धारा आछे, धारा मध्य प्रवाह थाके, आज के प्रवाह मध्य एकाने जाते चजल ओ दो तीन दिन परे कुथाए चले जावे प्रयास अप्रयास के समुद्रे चले जावे एक प्रवाह भजन प्रवाह था क्रमे क्रमे आम देखो भजन करे गुरु निष्ठा हो अनर्थ गुली धीरे धीरे दूर हो ना संसार प्रति स्त्री प्रति पति पति को आसक्ति आना यहाँ जाचाई करते हे देखते कि अभी नामे ते कि हरि कथा श्रवणे ते रुचि हो ना तापर देखबे जे आसक्ति होलो कि ना बिना हरि कथा सुनले थाकते पार संसारिक आसक्ति संपूर्ण रूपे ते नष्ट होए जाबे तत्पश्चात भाव उदित होवे तापर ओई विपलम्ब भाव तापर संभोग भाव ओई अष्टकालीय लीला सब बोली उदित होवे। एई जन्य धारा प्रवाह मध्ये यदि आमादेर इटा ना होय ताले बुझबे जे गलत आछे गलत कोथा दू जगह है तो गुरु मध्य गलत आछे माके ठीक डिरेक्शन दिशे ना अथवा अमार मध्य आछे तो यदि ओई रकम गुरु ठीक है अमार निष्ठा रुचि सब आछे किंतु अमार उन्नति होछे ना तखन बुझबे जे गुरु मध्य कुछ दोष आछे तखन ताहाके प्रणाम करे ताहार आदेश निये कोनो शिक्षा गुरु उन्नत तार काछे जेते हबे। আর যদি ওখানে ঠিক আছে আমার মধ্যে গলত আছে তাহলে এইটাকে সুধার করতে ক্রমে 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 একেবারে প্রেমা অবস্থা তক পৌঁছা যা চেষ্টা করতে নচিত অন্তত ভাবাবস্থা তাকে এই মনুষ্য জন্মেতে পৌঁছে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই তাহলে আর অনর্থে আবার আসবা সহজেই হয়। অতএব আপনারা খুব ভালোভাবে শুনবেন আর এটাকে পালন করবেন, এইটা জীবনের পুঁজি আপনার পকেটেতে হৃদয়তে নিয়ে বাড়ি ফিরবেন।
So Sri Guruji is saying, yesterday we finished commentary on Sri Damodara Bhasikam, but still, like Bhagavata Kartik Bharat, we will continue the chanting every morning. But from now on, the morning time, we will hear from Sri Thakur Bhaktivinod, Sri Bhajan Rahasya. Especially those who desire to perform bhajan, they should understand, what is this bhajan rahasya? Rahasya means confidential or secret thing. So we should hear very carefully and try to understand what is Bhajan Rahasya. the confidential truths of bhajan. Sri Chaitanya Mahaprabhu, with his own hand, has written 8 verses. That is Sri Shastri. In this bhajan rahasya, there is an explanation of Sri Thakur Bhaktivinoda of this Sri Shastrikam of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Also, Krishna's pastimes are divided into 8 divisions or 8 yam, astayam. In the daytime there are 3, in the nighttime there are also 3, and in the sandhyas, in the joining of morning and in the morning time and the evening time there is also 2. So 3 plus 3 plus 2 is 8 yams. Especially the Gaudiya Vaishnavas, with their siddhadeha, their internally conceived spiritual body, they always remember these 8 periods of Krishna's pastimes and engage in service to them. There are how to do, that is all explained in this Bhajan Rahasya. The 8 divisions of Krishna's pastimes are Nisand Lila, Pratakal, Purvana, Madhyan Lila, Sayan Lila, Prados Lila, Naisa Lila, and then again Nishanta Lila. So just as there are 8 verses in Chikshastikam, as there are 8 divisions of Krishna's pastimes, there have also been 8 stages of attainment of devotional service, as we've been hearing Adol Shraddha Prakasava Sandha. First there is Shraddha, or faith. By that faith one takes shelter of a bona fide guru and begins the process of devotion, which is called bhajana kriya. By that bhajana kriya one experiences anantha nivritti, or cessation of disturbing elements. What is anantha? Anartha. Artha means which is valuable. Anantha, which has no value. Therefore, forgetting Krishna's service, that is the real anatta. That manifests in conception of I am mine. I am this body, and what belongs to this body in terms of wife, wealth, children, house, this belongs to me, this for my enjoyment. This is the root of all anattas. By this we think, by accumulating money, I will be happy. But do not think like this. By attachment to wealth, one will simply take birth again and end up like a snake, because snake always protects his wealth. One will be like Kuvair, sitting on his money. Therefore, we should accumulate enough wealth which is sufficient to maintain the body. Because at the time of death, we will not take even 1 rupee with us, what to speak of family members. We should not be like donkeys, simply carrying a heavy load with no benefit to ourselves. Therefore, whatever we do in this world, we should do for the happiness and the service of Bhagavan. We should have no attachment. And this attachment is the root cause of all other anattas, or unwanted desires. Therefore, after anatta nivritti comes nishtha, fixed determination, ruchi, taste, ashakti, attachment, bhava-bhakti, then the phone went up, I couldn't hear it, then viraha, then some viparava prem, then some bold meeting. Therefore, by hearing very carefully this bhajan rahasya, we will attain the qualification to enter into all of these things, especially after Kali Lila of Radha and Krishna. Therefore, hear, and not only hear, but try to understand the subject matter and try to enter it. In a flowing river that is also called the Dada, the water. Current. Therefore, what water is there today now, after 2 or 3 days will go anywhere. Even to Allahabad, Prayag, means it always moving. Therefore, our bhajan should be like this. It should always be progressing. Therefore, we should try and understand whether really our anattas are going, is nishtha appearing, are we still maintaining attachment to women? Do we have taste in taking the name or in hearing Harikatha? If one has developed attachment to hearing Harikatha, then definitely all anattas or unwanted desires will be completely destroyed. Then after this, one will easily achieve Bhava Bhakti. Therefore, despite all this, there may be some hope. Even though we may have Guru Nishtha performing the limbs of devotion, we are not improving, then it could be the fault is in the spiritual master, the Diksha Guru. In that case, one should take shelter of a high class or Shiksha Guru. And if Diksha Guru is okay, and still we are not advancing, then it must be the hole is in us, the fault is in us. Therefore, we should endeavor to increase our devotion and steadily, steadily progress towards the stage of Prema Bhakti. Therefore, this Bhava Bhakti is most difficult to achieve. And having achieved the stage of Bhava Bhakti, all these unwanted anattas and desires will never return. Therefore, hear and try to follow nicely and carry these with us, with you always in your hearts.
এখনই আমরা ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে যাব, অক্রূর ঘাট, অক্রূর ঘাট আমরা যাব, ওটাকে ব্রহ্ম হরদ বলা অক্রূর ঘাট। তারপরে গোপী যজ্ঞ পত্নীরা যেখানে থেকে বাড়িতে ছিল সেখানে কৃষ্ণ সখা পাঠিয়েছিলেন, ওই ভাতরওলে যাব। যজ্ঞ যেখানে করেছিল ব্রাহ্মণরা সেখানে যাব, ওইখানে আমাদের জল পান হবে, আর ওইখান থেকে আমরা কি ধাম আনন্দ ধামেতে যাব, ওখানে প্রসাদ সেবা ইত্যাদি হবে, এখানে কোনো রান্না হবে না, ওখানেতেই জলপান হবে আর প্রসাদও হবে। অতএব আপনারা সকলেই ওখানে যাবেন, এক্ষণি আমরা যাত্রা করছি, সব লোকই যাবেন। উই আর গোয়িং টু ভাতরল, উই আর গোয়িং টু যজ্ঞ পত্নি প্লেস, ইউ শুড অল গো দেয়ার ইন ভাতরল, ইন যজ্ঞ পত্নি স্থান উই উইল টেক breakfast and in Ananda Dham we will take prasadam. So you must go all. I am also coming. Just I am coming.